अब आप मेरे करीब आने से घबराती नहीं हैं, बल्कि बेझिझक मुझसे समा जाती हैं। अब हमारा रिश्ता मुकम्मल हो चुका है। हम एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंपकर एक दूसरे को पा चुके हैं और अपने इस प्यार के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अक्षय के लबों से निकले एक एक शब्द ने अहाना को रोमांचित किया था। उसकी नज़दीकी, ये स्पर्श उसके मन को उत्साह से भर रहा था। प्रेग्नेंसी की खबर मिलने के बाद ये पहली बार था जब अक्षय यूं उसके करीब आया था और उसके वजूद पर अपने प्यार की गहरी छाप छोड़ता जा रहा था। अक्षय के जिस्म से उठती खुशबू उसके दिल को बेकरार कर गई थी। कुछ अरमान थे जो बाहर आने को मचल उठे थे। आज भी अक्षय की छुअन का गहरा असर होता था उस पर। अहाना पर उसकी मोहब्बत की खुमारी छा गई थी। उनकी बढ़ती नज़दीकियों के साथ वो अक्षय के प्यार के नशे में डूबती जा रही थी। अक्षय की बाहों के घेरे में बेसुद अहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी बेचैन धड़कने और तेजी से ऊपर नीचे होता सीना उसके अनकहे जज्बातों और दिल के हाल को बखूबी बयां कर रहा था। अनु, कमरे में चलें? सवाल आम सा था, पर उसके पीछे कई अनकहे जज्बात, अधूरी ख्वाहिशें और मचलते अरमान छुपे थे। अक्षय के सीने से लगी अहाना ने सर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर कर दी और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठाए अक्षय सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। आज फिर दो रूहों का मिलन हुआ था। अक्षय की मोहब्बत में अहाना के रोम रोम को महका दिया था। वो मुरझाई कली प्यार के सावन में भीग कर एक बार फिर ताज़े गुलाब सी खिल उठी थी। उसका पोर पोर अक्षय की मोहब्बत में डूबा था और अपनी सुदबुद बिसराए वो प्यार भरे इन मीठे मीठे एहसासों में डूबती चली गई थी और अपनी शर्म हया त्यागते हुए अक्षय का पूरा साथ दे रही थी। अगले दिन अहाना के चेहरे पर अलग ही नूर बिखरा था। आज फिर अक्षय से नज़र मिलते ही उसकी पलकों ने झुककर उसके रुखसारों को चूम लिया था। चांद सा गोरे मुखड़े पर हया की लाली बिखरी थी और उसका ये रूप देखकर अक्षय का दिल खुशी से घुलाटियां मार रहा था। नाश्ते के बाद दोनों कानपुर की सैर को निकल गए। अक्षय आगे बैठा था और अहाना उसके पीछे बैठकर उसकी कानपुर की गलियों से जान पहचान करवा रही थी। दोनों साथ में बहुत खुश थे। कुछ दिन और ठहरे थे वे यहाँ, जिसमें अहाना ने उसे पूरा कानपुर घुमाया था। साथ में दोनों ने ढेर सारी हसीन यादें भी बनाई थीं और खूब इंजॉय भी किया था। उसके बाद उन्हें वापस दिल्ली जाना पड़ा। अहाना काफ़ी हद तक उस सदमे से उबर चुकी थी, संभल गई थी और एक बार फिर जिंदगी जीने लगी थी। उसे सामान्य देखकर वहाँ भी सब खुश थे। दिल्ली पहुँचने के अगले ही दिन अक्षय अहाना को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया था। डॉक्टर उसमें आए बदलाव देखकर हैरान भी थी और खुश भी। उसकी दवाइयाँ अब कम हो गई थीं। आज से अक्षय और अहाना दोनों ने अपनी अपनी जॉब वापस रिज्यूम की थी। अच्छे से समझाने के बाद अक्षय ही अहाना को स्कूल छोड़ने गया था। शाम को वो जल्दी ही घर लौट आया था। अहाना उसे कहीं नजर नहीं आई तो उसने ड्राइंग रूम में बैठी सब्जी काटती रूपाली जी से ही पूछ लिया, मम्मी अहाना कहाँ है? जाओ देखो अपनी बीवी को, सुबह से कमरे में बंद है, उन्होंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अक्षय चौंक गया और हैरानगी से सवाल किया, सुबह से कमरे में बंद है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तो मैं खुद उन्हें स्कूल छोड़कर आया था। हमें क्या पता कैसे क्या हो गया, जो हमने देखा सो बता रहे हैं। छोड़ा होगा तुमने उसे स्कूल पर, सुबह ही लौट आई थी वो और तब से कमरे में बंद है, उन्होंने चिढ़ते हुए उखड़े अंदाज में जवाब दिया। पर अक्षय अब भी हैरान था और कई सवाल उसके मन में घूम रहे थे। वो सुबह ही लौट आई और उसके बाद से कमरे से बाहर नहीं निकली तो आपने जाकर देखा नहीं उन्हें? कुछ पूछा नहीं उनसे कि इतनी जल्दी कैसे लौट आई? अक्षय के सवाल सुनकर रूपाली जी के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए और उन्होंने तल्ख लहजे में जवाब दिया, हम क्यों पूछेंगे तुम्हारी बीवी से कुछ भी, हमारा उसे कुछ कहना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो जाओ जाकर खुद देख लो अपनी बीवी और पूछ भी लेना कि जब घर लौटना ही था तो स्कूल गई ही क्यों और अब कमरे में बंद होकर किस बात का मातम मना रही है। अक्षय पल भर को उनके इन तेवरों को देखता ही रह गया। फिर उसने अफसोस से सर हिलाया और तुरंत ही सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचा और बेड पर बैठी अहाना पर नजर पड़ते ही पल भर को उसके कदम ठिठक गए। बेड पर अहाना सर झुकाए खामोश सी बैठी थी। अक्षय ने अपनी चढ़ी सांसों को सामान्य किया, धीमे कदमों से चलते हुए अहाना के पास पहुंचा और परेशान निगाहों से उसे देखते हुए चिंतित स्वर में सवाल किया, अनु क्या हुआ, आप स्कूल से लौट क्यों आई? तबीयत खराब है आपकी? इतनी उदास और बुझी बुझी सी क्यों लग रही हैं आप? नहीं, तबीयत खराब नहीं हमारी, अहाना ने सर झुकाए हुए ही धीमे स्वर में जवाब दिया। अक्षय ने एक बार फिर चिंतित स्वर में सवाल किया, तो फिर क्या हुआ है, जल्दी लौट क्यों आई, और खुद को कमरे में क्यों बंद किया हुआ है? जवाब में आहाना ने निगाहें उसकी ओर उठाई। उसकी आंसुओं से भरी गुलाबी आंखें देखकर अक्षय बेचैन हो गया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में व्याकुलता से बोला, आहाना आप रो रही हैं, कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है आपसे? कोई बात हुई है, मुझे बताइए क्या हुआ है? आज स्कूल में स्टूडेंट ने बेबी के बारे में पूछा, आहाना ने रुंधे स्वर में जवाब दिया और आंखों में कैद आंसू उसके रुखसारों पर बिखर गए। अक्षय ने बेबसी व अफसोस से अपनी आंखें भींच ली, ठंडी आह भरी, फिर आहाना के आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही कोमल स्वर में बोला, बस इतनी सी बात पर आपने खुद को और मुझे दोनों को परेशान कर दिया। मैंने समझाया था ना आपको कि ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है, सच्चाई का सामना मजबूती से करना है। लोग तो पूछेंगे ही, अभी पर आप एक बार जवाब दे देंगी फिर कोई कुछ नहीं कहेगा और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। अब कोई आपसे सवाल करे तो कह दीजिएगा कि अभी हमारी किस्मत में इस सुख के लिए और इंतजार करना लिखा है। अभी भगवान जी ने हमसे हमारा बच्चा लिया है ताकि सही वक्त आने पर उसे हमारे पास भेजें और हम उस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और दोबारा ऐसे भाग कर नहीं आना है और रोना तो बिल्कुल नहीं है, समझी? अक्षय समझा तो रहा था पर जानता था कि उसका कोई भी तर्क, उसकी कही कोई भी बात इस वक्त आहाना के दर्द को कम नहीं कर सकती। उसे थोड़ा वक्त लगेगा खुद को संभालने में और आगे बिना कुछ कहे उसने आहाना को अपने सीने से लगा लिया। आहाना अब रो नहीं रही थी, बस उसकी बाहों में समाई खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी।